Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک جو ہفتے میں ایک جمعہ عطا کرتا ہے اس جمعے کی امپورٹنس کیا ہیں, کچھ نہ کچھ اس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ کو امپورٹنس پتہ ہوتی ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جمعہ ہمیشہ سیلیبریٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ عید ہے اور دنوں کا سردار ہے. پھر اس کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کہ جمعے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 200 بار درود پڑھتا ہے جمعہ کا دن, اللہ کریم اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. جہاں اس طرح کے فضائل بیان ہوتے ہیں گناہ کے بخشش کے, تو وہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. پھر جمعہ میں اسپیشل دو مومنٹس ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور دعا ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھی ہے, نیک ہے یا بد ہے, اچھا ہے یا برا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, دعا کی حاجت سے کوئی بھی فارغ نہیں ہے. آپ مجھے کہیں گے, میں آپ کو کہوں گا دعا میں یاد رکھیے گا, یہ الگ بات ہے. ہم آپس میں الجھتے رہیں گے, نہیں پہلے آپ کیجئے, پہلے آپ کیجئے, مومنٹ نکل جائے گی. جس کو دعا کا کہا جائے پہلے کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. ادعونی استجیب لکم, اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں, مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. جمعہ میں یہ دو مومنٹ اسپیشلی طور پر یاد رکھنی ہے. نمبر ایک, جمعہ میں جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جو خطیب صاحب ہوتے ہیں خطبہ دیتے ہیں جو, اور خطبہ دے کر جو بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں نا, خطبہ دو حصوں میں ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو جو خطبہ دے کر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا خطیب صاحب, امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں, جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ جتنی موومنٹ بیٹھے ہیں سیکنڈس پر یہ ہوتا ہے بیسیکلی. ہوگا تو کوئی ایک آدھ منٹ بڑی مشکل سے بیٹھ جائیں گے خطیب صاحب اپنے ممبر پر, پھر کھڑے ہو کے انہوں نے خطبہ دینا ہے. وہ جو چھوٹی سی موومنٹ ہے نا, وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. بہتر کیا ہے, ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں بندہ اپنے رب سے دعا کر لے. اس گھڑی میں کی گئی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتا. ایک چھوٹا سا وقت ہوتا ہے, جیسے نا اتنا سا وقت ہے, یہ خزانہ پڑا ہے, جتنا اٹھانا اٹھا لو. اب آپ کیا کریں گے, دو ہاتھوں سے کھائیں گے, دو ہاتھوں سے لوٹیں گے, یار ابھی مومنٹ آئی ہو چلی جائے گی. یہ بہت چھوٹی سی مومنٹ ہوتی ہے, جامع دعا ہے. ایک بعض اوقات خطیب صاحب اتنا موقع ہی نہیں دیتے, بیٹھتے پھر کھڑے جاتے, جمعہ بھی سے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب بالکل کم سے کم مومنٹ ہے, کوئی اور دعا کرنے کی جیسے نہیں ہے. تو میں اسے آپ کو, آپ نے کہنا دل ہی دل میں, میں زبان سے آپ کو کہہ کر بتا دیتا ہوں. مثال کے طور جیسے ہی خطیب صاحب بیٹھ گئے, اب الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اب یہ دل ہی دل, کیونکہ دعا سے پہلے ہم تو صلاۃ پڑھیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد, ہو سکتا ہے اتنی دیر میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ جو دعا آپ نے مانگ لی نا, اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں آ گئیں. یہ عافیت کی دعا کر دیں, اللہم انی اسلک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ, عافیت کی دعا مانگے. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں جس میں عافیت کا سوال کیا جائے, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عافیت کا سوال. تو اب اسٹوڈنٹ زیادہ تر یہ کہیں گے, یا اللہ کرم کر دے, امتحان قریب آ رہے ہیں, نکل جاؤں, تیاری کی نہیں تھی, پڑھا تو تھا نہیں, اب آ گئی ہے جان بھر, کیا کریں. دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرے تو اللہ پاک سب بہتر کر دے گا. اب محنت کی نہیں تھی تو ظاہر ہوا پھر اس کا تو نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا, وہ تو کچھ کر نہیں سکتے. تو دیوار پر سر مارے گے تو لگنا ہی ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لگے نہیں. मगर ये मूवमेंट है। अच्छा, इसमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, माँ बाप के लिए दुआ कर लें, सारी उम्मत के लिए दुआ कर लें, गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करें, सैलाब ज़दा लोगों के लिए दुआ, अगर वक्त है तो ये कर लें, अपने लिए दुनिया आखिरत का सवाल कर लें, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप को कभी भी नहीं भूलें, अपने जो मोहसिन हैं जो हम पर एहसान करते हैं इन्हें ना भूलें, अगर जितना वक्त आपको मिले, मगर दिल ही दिल में करें। तो ये फ्यू मिनट्स में या थोड़ी देर में ये हो जाएगा। एक और मोमेंट है जुमे की, असर और मगरिब के दरमियान, ये भी कबूलियत है, दुआ का वक्त है। अब इसमें भी एक स्पेशल मोमेंट है, एक तो ये पूरी की पूरी मोमेंट बड़ी एक्सक्लूसिव है, मगर इसमें भी एक और एक्सक्लूसिव मोमेंट है, वो है गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले। सैयदतुना खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ख़ास तौर पर इस मोमेंट का अहतमाम फरमाया करती थी और अपनी कनीज हज़रत फिदा से फरमाया करती थी, जो सूरज की इनको कंडीशन और पोजिशन बताया करती थी। हमारे वो ये कहते यार हमको तो पहले का हमारे इमाम साहब ने बताया नहीं था। भैया इमाम साहब ने बताया था, आप पहुँचे जुम्मे से दो मिनट पहले थे। हम जनरली जुम्मे की नमाज कब पढ़ रहे जाते हैं, हम ये थोड़ी पूछते कि इमाम साहब का बयान कितने बजे होगा, हम पूछते हैं जुम्मे की नमाज कितने बजे। इमाम साहब ने तो बयान कर दिया होता 20-25 मिनट का, और हम पहुँचते ही एक तो हो सकता है उसमें इमाम साहब ने जुम्मे की सारी बातें बयान कर दी हों। तो हमारी ज़िंदगी में कितने जुम्मा आए और चले गए। चले आज तो आप सुन रहे हैं, आज आप सुन रहे हैं, आज से नीयत कर लें कि हमारा कोई आने वाला जुम्मा हम उसे ज़ाया नहीं करेंगे। जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है, जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इतनी इम्पोर्टेंट है ये जुम्मे की घड़ियाँ, जिसे हमें नहीं पता होता, हम इसको ऑर्डिनरी डे में ले जाते। जुम्मा इज द नॉट द ऑर्डिनरी डे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जुम्मा, जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर वालिदैन से राबता करें। आप कहिए यार यार कल तो बात हुई थी, कोई बात नहीं, कल बात हुई थी तो माँ बाप आपसे तो दिन में 10 दफ़ा बातें करते थे, इनको मज़ा आता था। आपको माँ बाप से हफ्ते में एक दफ़ा बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती, तो कम अज़ कम जुम्मे के दिन अम्मी अबू को मैसेज करें, भाई बहनों को मैसेज करें, जुम्मा मुबारक, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। जिसको कामयाबी दुनिया और आखिरत में मिलेगी उसे माँ बाप का दुआ का हिस्सा ज़रूर होगा। अगर माँ बाप की दुआएं नहीं होंगी तो बंदा बस तड़पता रहे, तरसता रहे, इसे कामयाबी नहीं मिलती। तो जुम्मे के दिन की ये बरकत होती है, और माँ बाप की खिदमत की फिर अलग बरकत मिलेगी। माँ बाप खुश हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे, आपको दुआएँ देंगे, तो इंशाल्लाह मुश्किलें आसान हो जाती हैं। माँ बाप की दुआओं का बड़ा असर होता है। एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में मैं किताब में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, कल उनका पेपर था, रात माँ बीमार हो गई, अब उन्होंने सारा रिवाइज करना था ना एग्ज़ाम का, अब रिवाइज तो कर नहीं सकी, वो पूरी रात माँ की खिदमत करती रही। अब माँ बीमार थी, पढ़ती कहाँ से, पूरी रात माँ की खिदमत में गुजार दी, रात सोई नहीं, सुबह 8 बजे पेपर, रात सोई नहीं, सुबह 8 बजे पेपर था। अब नींद से आंखें लाल हो रही हैं, जहन में कुछ आ नहीं रहा है, सोई तो थी नहीं, अब क्वेश्चन पेपर सामने रखा हुआ है, जवाब याद आ नहीं रहा। अब बोले या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो आज तो पढ़ी पढ़ने वाली फीमेल स्टूडेंट थी, मगर उसको याद नहीं आ रहा था। उसने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह रात भर अपनी माँ की खिदमत में थी, करम कर दे। मैंने किताब में पढ़ा कि उसके सामने गोया के इमेजिनेशन के साथ जवाब ऐसे सामने आ रहे थे, और उसको जैसे कि सवालात के जवाब उसके जहन पर जैसे कि एज ए कंप्यूटर उसके आ रहे हैं, और वो जवाब यूँ लिखना शुरू हो गई। सबसे पहले उसका पेपर ख़त्म हुआ और सबसे अच्छे मार्क्स उसके उस पेपर में आ गए। ये बात थी इसकी माँ की दुआ और माँ की खिदमत की। जिसको ज़िंदगी और आखरत में रोने से बचना है ना, उसको चाहिए कि दुनिया में अपने माँ बाप को ना रुलाए। जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाएगा, कब्र व आखरत में दुनिया में ये रोता रहेगा। और जो जिसने दुनिया में अपने माँ बाप को नहीं रुलाया और माँ बाप को खुश किया, माँ बाप की दुआएं ली, इसको दुनिया में भी इंशाल्लाह ताला खुशी नसीब होगी, कब्र हशर में भी खुशी नसीब होगी, और इंशाल्लाह खुशी खुशी अल्लाह नजात और जन्नत में दाखिल होगा। अच्छा, अब ये जो मोमेंट है, मैंने कहा कि असर और मगरिब के दरमियान दुआ कबूल होती है, ये मोमेंट की भी खूबी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक है, पैदाइश है, वो जुम्मा को असर और मगरिब के दरमियान में हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जुम्मा को असर और मगरिब के दरमियान में हुई है। तो जुम्मा और असर और मगरिब के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, अल्लाह पाक ने इस घड़ी को कबूलियत दुआ की घड़ी बना दिया। کہ جو اس گھڑی میں دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو خیر اللہ پاک ہمیں زندگی دے ایمان و عافیت کے ساتھ. زندگی میں گھڑیاں آتی رہیں گی, ہم اس گھڑیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ اسلامی تہوار اور اسلامی ایام اور اسلامی مومنٹ ہے نا, اتنی خوبصورت ہیں, اتنی خوبی ہے, اور یہ ہمیں حاصل ہے. میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مجھے دعوت اسلامی نے دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے ذریعے مجھے جانے کا موقع ملا ہے, اللہ کے کرم سے, نیکی کی دعوت میں. سب سے پہلے سورج جو طلوع ہوتا ہے فجی سے ہوتا ہے, سورج کی سب سے یوں سمجھے کہ فجر کا وقت سب سے پہلے ساری دنیا میں فجی میں شروع ہوتا ہے. دعوت اسلامی فجی سے شروع ہو کر الاسکا تک ہے, آپ کو ملے گی. رشیا سے لے کر نیچے ساؤتھ افریقہ تک ہے, کیپ ٹاؤن تک ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی کرو رحمت ہے. کئی جگہوں پر جانا ہوا, جو اسلامی تہوار منانے کی لذت اور روحانیت یہاں ہے نا, آپ کو دنیا میں شاید کہیں نہیں ملے گی. یہ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے, آپ ہی کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ابھی پچھلے دنوں مجھے فرانس میں ملے, باربیکیو وغیرہ کا انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا اور ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے. مدنی چینل دعوت اسلامی کا زبردست چینل ہے, آپ بھی دیکھتے رہیں. تو مدنی چینل پر ریکارڈنگ چلنی تھی, تو میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کیسے رہی. تو کہا میں رمضان سے پہلے آیا ہوں. اب سنیے گا, میں رمضان سے پہلے فرانس کا واقعہ ہی ہے, پیرس کا. پیرس سے تھوڑا قریب ایک شہر ہے, تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا میں رمضان سے پہلے آیا ہوں اور اسٹوڈنٹ تھے اور جاب کے لیے آئے تھے. تو کہا یہاں آیا تو جیسے ہی عید ہوئی تو میں نے نئے نئے کپڑے پہنے, عید کے کپڑے پہنتے ہم لوگ نے, وہ کپڑے پہن کے میں مسجد میں گیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اب عید کی نماز پڑھ کر میں بولوں ابھی لوگوں سے گلے ملیں گے, یہاں تو عید کی نماز پڑھی اور لوگ نکل گئے گھر سے, مسجد سے باہر, کو گلے ملنے والا نہیں. ارے کوئی تو جپی پاؤ, کوئی جپی پانے والا نہیں ہے. وہ کہنے لگا میں تو دیکھتا ہی رہ گیا, یار عید کا دینے کو گلے ملنے والا ہی نہیں ہے, کوئی گلے ملنے والا نہیں ہے. آئے نماز پڑھی نکل گئے, کہ سب کو کام پر جانا ہے, لیٹ ہو رہے ہیں. اب آفس میں گیا, عید کا دن تھا, کپڑے وپڑے پہن کے پہنچا. مجھے تو مجھے میرے باس نے کہا وٹ آر یو ویئرنگ, کیا پہن کر آئے ہو, تمہارا آفس ڈریس کا ہے. وہ عید کا دن ہے. واٹ عید, عید کیا ہوتی ہے. اب وہ بولا جا رہا تھا, روئے جا رہا تھا, بولے جا رہا, بولا مجھے میرے ماں باپ یاد آ رہے تھے. اتنا بڑا لڑکا تھا, اس کے ماں باپ یاد آ رہے تھے. کیونکہ جو عید اس نے یہاں منائی تھی وہ عید اس کی کہیں بھی نہیں بنتی. یہاں ہم ماں باپ سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں سے ملتے ہیں, پڑوسیوں سے ملتے ہیں, رشتے. اس کو کہتے ہیں نیشنل ویلیوز وتھ اسلامک ویلیوز. اگر آپ کہیں بھی نیشنل ویلیوز کو اسلامک ویلیوز کے ساتھ لے کر دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو سب سے خوبصورت تصویر آپ کو جہاں نظر آئے گی نا, وہ آپ کا ملک پاکستان ہے. یہ وہ بول رہا ہے جو پاکستان کے باہر دنیا کے کئی ملکوں میں وقت گزار چکا ہے. میں یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا, جو ہم یہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں نا اپنے ملک کے اوپر, وہ ملک میں ہی ہوں. باہر میں نے کوئی بھی نوٹوں کا درخت نہیں دیکھا. میں آپ بولو تو میں قسم لینے کے لیے تیار ہوں. مجھے کسی نے بھی یہ نہیں دکھایا کہ یہ پتے کی جگہ پر نوٹیں ہیں, تم تھوڑا ہلائے گا تو نوٹیں گریں گی. نہیں, محنت کرتا ہے تو یہاں بھی کماتا ہے, وہاں بھی کماتا ہے. وہاں ہم نے صبح 5-6 بجے لوگوں کو کام پر جاتے دیکھا ہے, منہ اندھیرے جاتے ہیں اور شام کو منہ اندھیرے واپس آتے ہیں. 2-2, 4-4, 6-6 سال تک گمنامی کی زندگی گزارتے. میں ترکی میں مل کر آیا ہوں ان سے, روتے ہوئے مل کر آیا ہوں. میں کہا واپس آ جاؤ, کہا ماں باپ واپس نہیں آنے دیتے. بہن کا سونا بیچ کر, گھر کا سونا بیچ کر میں یہاں آیا ہوں. مارتے ہیں, پٹوں سے مارتے ہیں, اور کہتے فون کر اور بول کے پیسے وہاں ہمارے ایجنٹ کو دے تاکہ دوسرا بھی کسٹمر ملے. کینو کے کھیتوں میں جا کر کینو توڑنے کا کام ملتا ہے. ان کی اپنی یہ زمینیں تھیں جس پر یہ کبھی زمین پر دیکھنے بھی نہیں گیا کہ بیج کون سا ڈلتا ہے. اب یہ باہر جا کر کینو توڑ رہا ہے, کینو توڑ رہا ہے. اور ہے ہمارا وہ گاؤں کا بابو, پینٹ وینٹ پہننے آتی نہیں ہے, پینٹ چڑھاتا ہے, ایسا عجیب لگتا ہے تجھے کیا ہو گیا. اللہ میں ایسا ہی ہوں, گاؤں کا بابو, ادھر کبھی جینٹل مین بن گیا. اگر پھر میں ان سے کہتا ہوں یار اتنی محنت تم اگر میرے ملک میں کرتے ہو تو تم بھی ترقی کرتے, میرا ملک بھی ترقی کرتا. میں وہاں سے اسٹوریز لے کر آتا ہوں. اس پر میں نے 4-5 پروگرام مدی چینل پہ لائیو کیے ہیں اور میں نے ان کے تاثرات بتائے کہ کیسے ہوتا ہے. محنت کریں, آپ کو وقت ملا ہے محنت کریں, موقع ملا ہے محنت کریں, ایمانداری اختیار کریں, دیانتداری اختیار کریں اور محنتی بن جائیں, ہنر حاصل کریں, پھر کہیے کام ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی کوئی سکسیس نصیب ہو, جس کو آپ سکسیس کہتے ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو مینٹیلٹی عطا فرمائے. سائیکولوجی یہ ایک سبجیکٹ ہے, آپ کے یہاں بھی یہ سبجیکٹ पढ़ा जाता। अभी नीचे सर बता रहे थे कि हमारे साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, और जब साइकोलॉजी का नाम आता है तो हमारे यहाँ एज ए एजुकेशन में सबसे पहले अरस्तु का नाम लिया जाता। तो इल्म जो यूनानी उलूम में से बड़ा फिलासफर मशहूर अरस्तु, इस साइकोलॉजी में इसका नाम बड़ा आता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ, आज थोड़ा इस पर मैं आपको बयान करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह अपने आने वालों की साइकोलॉजी जो सूरत हाल होती थी उसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया करते थे और उनको हल अता फरमाया करते थे और उनकी ज़िंदगियाँ बदल दिया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक खूबसूरत हदीस सुनिए पहले आप, ये भी समझिए कि साइकोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है आपका, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है लेकिन ये सारी ज़िंदगी में ये काम आता है। इवन के वालिद के लिए भी ये ज़रूरी है कि बेटे के साथ बैठकर जो बात करेगा तो उसको उसकी एज के हिसाब से बात करेगा ना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, हम गुरोह अम्बिया जो अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं, हम गुरोह अम्बिया को हुक्म दिया गया कि हम लोगों से इनकी अक्ल के मुताबिक बात करें, कि इन जो सामने वाला है इसकी अक्ल की पोजीशन क्या है। जब आप गुफ्तगू करते हैं, जैसे टीचर हमारे जो होते हैं ये स्टूडेंट से स्टूडेंट की लेवल पर आकर बात करेंगे, अगर ये अपने लेवल पर बात करेंगे तो स्टूडेंट की समझ में नहीं आएगी। इनको पता होगा कि ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसे कैसे बात करनी है, ये लास्ट ईयर का स्टूडेंट है उसे कैसे बात करनी है। तो एक अच्छा टीचर हमेशा सामने वाले की अक्ल के मुताबिक बात करेगा, एक अच्छा वालिद अपने बच्चों की अक्ल के मुताबिक बात। मेरी उम्र इस वक्त ऑलमोस्ट 57 ईयर, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मेरी एज 57 ईयर बनती है। अब मैं अपने बेटे के साथ बैठकर बात करूंगा तो मैं अपने बेटे के साथ बात करूंगा तो मैं एज ए 57 ईयर पर्सन बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी एज और मेरी एज के अंदर 20-22-25 साल का फर्क है। मैं अपने बच्चे से बात करते हुए खुद को 20-22-25 साल नीचे लाऊंगा ताकि उसको मेरी बात समझ में तो आए। अब मेरे बेटे का भी एक बेटा है, अब मैं उसके साथ बैठूंगा तो मैं उससे मेरे बेटे की तरह बात नहीं करूंगा, मैं उससे अपने पोते मेरी पोते की जो एज है मैं उसकी तरह बात करूंगा, क्योंकि उसकी अक्ल का एक अपना मैार है। तो हम जब तक लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक ट्रीट करेंगे, क्योंकि अक्ल तो अपनी जगह, बच्चे की अक्ल कितनी होती है, हम बोले बच्चे से इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे हमारे बाद नौजवानों से इस तरह की बात की जाती है नौजवान उसको कबूल नहीं कर रहा होता। मेरी एज के जितने भी लोग होते हैं ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि हमें अपनी एज को सामने रखकर महज बात नहीं करनी। आप हमें देखो, खुद को देखो, आप हमें नहीं देखो, आप खुद को उस वक्त देखो जब आप 20-25 साल के थे। यानी मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं अगर किसी को यार मुझे देखो तुझे देख तो कहेगा मैं आपको कैसे देखूं, पहले आप खुद को देखो, यू आर 57 ईयर ओल्ड। आप उस वक्त देखे खुद को जब आप 25 साल के थे और मैं 25 साल का हूं, उस वक्त 25 साल और 25 साल एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें ना आप। जब आप 25 साल के थे तो क्या मुझसे बेहतर थे? तो कंपैरिजन कहेगा नहीं यार तुम अभी मेरे से बेहतर हो, रिजल्ट सामने आ गया। तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर होगा ना, या आप किसी की तफहीम करें तो फिर आप इसको कंपैरिजन में खुद को तो नहीं ना रखेंगे, कंपैरिजन में इसी की कोई एज फैक्टर को सामने रखकर किसी को रखेंगे, यार आप बेटा उसको देखो खुद को देखो। तो बच्चों की एक अपनी सोच होती है, नौजवानों की एक अपनी सोच होती है। अगर हम लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिजल्ट मिलेगा। और बच्चों से भी, बच्चों के मुताबिक, मेरे यहाँ कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जिनके बच्चे होंगे और वो बच्चों से जाकर बात करेंगे तो बड़ों की तरह बात तो नहीं करेंगे, बच्चा तो बच्चा होता है। एक वाली साहब घर में दाखिल हुए, दाखिल होकर पूछा घर में बच्चा कहाँ है, तो बच्चे की माँ ने कहा मारा उसको, पलंग के नीचे चला गया रोता रोता हुआ, मारा हाँ मस्ती करता है तो मारा उसको पलंग के नीचे जाकर बैठा हुआ है, जाओ मना कर ले आओ बाहर। अब पलंग के नीचे बच्चा चला गया, ठीक है, अब पलंग के नीचे बच्चा कैसे गया होगा, घुटनों के बल गया होगा। अब बाप बच्चे को मनाने के लिए पलंग के नीचे जा रहा है घुटनों के बल, अब बच्चा देख रहा है मैं भी इसी तरह पलंग के नीचे आया था, मेरे वालिद साहब भी इसी तरह पलंग के नीचे आए। तो जैसे वालिद साहब पलंग के नीचे दाखिल हुए तो बच्चे ने कहा अब्बा अम्मी ने मारा, तो उसको ऐसा लगा ना कि यहाँ अंदर नीचे वही आता है जिसको मार पड़ती है। ये बच्चे की साइकोलॉजी होती है। इतिहास से एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे माल दीजिए, मांगने आए थे कुछ ना कुछ, तो अभी कलाम सुना नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका की बारगाह में कोई आ जाए, और आज भी है, अल्लाह ताला मदीने जाना नसीब करे, ये दरबार मोहम्मद है, यहां मिलता है बे मांगे, ये दरबार मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां मिलता है बे मांगे। अरे नादान, यहां दामन को फैलाया नहीं करते, ये दरबार मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। निकाला कब किसी को बज़्म में फैज़े आम से तूने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। और अभी वो शेर इसी में, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। ये आका की शान है, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। तो उसने आकर सरकार से कुछ मांगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता फरमा दिया। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तेरे साथ कोई भलाई का काम किया, अच्छा काम किया? और थे आरा भी, कोई खास काम किया ही नहीं, कोई सी खास चीज दी नहीं, कोई भलाई का काम किया ही नहीं। और उसका ये जो एक रफ जवाब था सरकार की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा करम को तो गुस्सा आ गया, ये बात कैसे कर रहा है। वो तो भागे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो सहाबा करम खड़े थे उसको पकड़ने के लिए, तो करके ये बात करने का तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडल कैसे कर रहे हैं, टैकल कैसे कर रहे हैं। रोक दिया, उसे अंदर ले गए, अंदर ले जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे और अता फरमाया, और अता फरमाया। यहां हम जैसा हुआ तो जो दिया था ले ले वापस दे, आपने और अता किया, और अता करके फरमाया, क्या मैंने तेरे साथ कोई भलाई की? तो फिर उसने कहा, जी आपने मेरे साथ भलाई की, मेरे साथ ये किया, बहुत अच्छे कलिमात उसने कहे। तो नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात तुमने भी मेरे सामने कही है, क्या तुम मेरे सहाबा के सामने कह सकते हो? हाय हाय, बात देख रहे, क्योंकि तुम्हारी बात सुनकर मेरे सहाबा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ आ गया है। उसको तो मेरे आका ने बचाया, सहाबा के कल्बों की सफाई भी फरमा रहे हैं कि उनके दिल में भी अब इसके लिए कुछ रहे नहीं। कहा बिल्कुल कह देंगे। अगले दिन वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात बयान की, और कि ये इस तरह जो इसने बात की थी इस बात के ताल्लुक से ये और कुछ कहना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो कहा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्हें इरशाद फरमाया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनको हैंडल किया, नफ्सियात के मुताबिक। यही है ना, आपका नफ्सियात क्या कहता है, साइकोलॉजिकली क्या बात होती है, क्या आप उसके साथ हमदर्दी करें। अच्छा, एक और बात जो साइकोलॉजिकली देखी जाती है वो है ख्वाब। आपको शायद पता हो ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाया करते थे, अगर किसी ने रात को ख्वाब देखा तो बयान करो। अच्छा, हम में से हर एक ख्वाब देखता होगा, अब वो जो भी देखता होगा सुबह देखता होगा, बिस्तर पर पड़ा हो तो ख्वाब हमारे लाशऊर में जो चीज़ मौजूद होती है ना, उसकी कोई नुमाइंदगी कर रहा होता है हमारा ख्वाब। ये एक होता, अगर मैं आपसे ख्वाब पूछूंगा ना, तो मुझे आपके लाशऊर में क्या चीज़ मौजूद है और आपके अंदर क्या चल रहा है ना, ये मुझे पता चलेगा। ये साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और 1890 के अंदर इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की गई थी, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम से पूछा करते थे बाकायदा फजर के बाद कि आज बताओ किसने ख्वाब देखा, और सहाबाए कराम अलैहि रिदवान अपने ख्वाब बयान करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ख्वाबों को सुनकर इनकी ताबीर बयान करते कि तुम्हारे ख्वाब की ये ताबीर है। आपको पता चलेगा कोई शख्स ख्वाब की ताबीर बयान करता है तो मेरा ख्याल आप सब उसके पास लाइन लगा कर जाएंगे, यार आज ये ख्वाब देखा था क्या कहते हो, आज ये ख्वाब देखा था क्या कहता हो, ये ख्वाब देखा था क्या कहते हो। तो ख्वाबों की जो ताबीर बताएगा आप उसके करीब आएंगे, और वो जो ताबीर बताएगा आपको यकीन भी आ जाएगा। अच्छा, ख्वाब की ताबीर हर कोई नहीं बता सकता, ये मैं आपको, ख्वाब की ताबीर खुद एक इल्म है जो अल्लाह पाक की रहमत से उसको अता होता है, और उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल होती है, मुताला भी करना पड़ता है। यानी ख्वाब किसी को बताना यूं नहीं हर एक को बताते फिरें, ख्वाब उसी को बताना चाहिए जिसको ताबीर का इल्म हासिल है, वरना फिर अपने पास रहने दे ख्वाब को। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और वो बदकारी की इजाजत मांगता है, नौजवान है और वो गुनाह की इजाजत मांगता है कि मुझे बदकारी की इजाजत दीजिए। अब ये सुनकर भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान बड़े जज्बाती हो गए कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उसको हैंडल कर रहे हैं ये जरा देखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे करीब करते हैं, वो शख्स मेरे आका के करीब आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कलाम फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ अगर ये काम जो तुम जिस काम की मुझसे इजाज़त मांगते हो अगर ये काम कोई तुम्हारी माँ के साथ करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये काम तुम्हारी कोई बहन के साथ करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ये काम तुम्हारी खाला, इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रिश्ते इनके सामने रखे तो इन्होंने हर एक का ही जवाब दिया कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आका ने फरमाया फिर जब तुम भी किसी के साथ ये अमल करोगे तो वो भी किसी की माँ होगी, बहन होगी, खाला होगी, उसको कैसे अच्छा लगेगा? आप लॉजिक समझ रहे हैं? दलाइल, इसको कहते हैं दलाइल देना। हमारे यहाँ दलाइल नहीं दी जाते, हमारे यहाँ समझाया नहीं जाता, हमारे यहाँ डांटा जाता है। हमारे यहाँ मिजाज घर में भी बड़ा भाई छोटे भाई को डांट देगा, उस टीचर स्टूडेंट को डांट देगा, बाप बेटे को डांट देगा, शोर बीवी को डांट देगा। अगर बीवी ऊपर की होगी तो वो शोर को डांट देगी, चुप होकर बैठ जाओ, शोर हो चुप होकर बैठ जाएगा। अब जैसा घर, ये भी होता है कि कोई 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 हल्का कोई भारी, अब कौन है क्या है तो पता नहीं चलता। इस पर भी चलो मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक लड़के की शादी होती है तो उसको जब वो अपने कमरे में जा रहा होता है, रुखसती हो गई होती है लड़की की, तो इसको कमरे उरूसी कहते हैं। तो जब उस कमरे में जा रहा होता है तो उसके साइड फ्रेंड होते हैं इस तरह के, सुन हाँ, वो कमरे में ना कोने में पर्दे के पीछे एक मुर्गा रखा है मैंने, मुर्गा। बोला मुर्गा क्यों रखा है मेरे कमरे में? बस तू जा कर ना मुर्गे की गर्दन तोड़ देना। बोला क्यों तोड़ूँ? वो मुर्गे की गर्दन तोड़ेगा ना रोप जड़ जाएगा अगर तू गुस्से वाला है, जिंदगी भर दबी रहेगी। अच्छा ज़रूरी है, तू करके तो देख। वो अंदर गया, अब अंदर जाके मुर्गा ढूंढ रहा है, मुर्गा मिल ही नहीं रहा। अब वो अंदर जाके घबराया परेशान। अब वो लड़की जो थी वो घूंघट में थी, वो लड़की बोले, अब उसको हिम्मत हुई, क्या ढूंढ रहे हैं? को मुर्गा ढूंढ रहा हूँ, दोस्तों ने कहा था कमरे में मुर्गा है। कहा हाँ हाँ मुर्गा तो था, वो कहाँ है? बोला मैंने गर्दन तोड़ के साइड में रख दिया। जो मैंने आपको बात बयान की सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, मगर ये दुरुस्त नहीं है। ना शोहर ने मर्द शादी इसलिए की है कि मैं बीवी को अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखूँगा, ना औरत ने इसलिए शादी की है कि मैं मर्द को अपने रोप में रखूँगी। आप दोनों ने शादी की है खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक दूसरे के हक अदा करने के लिए, और एक दूसरे का हक अदा कर कर अल्लाह से जन्नत लेने के लिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिस दिन हमारी ये सोच बन गई ना, हमारी शादियाँ नहीं टूटेंगी। आप सही बताएं कि हमारे बाप दादाओं के इतने घर टूटते थे, आज जो तलाक और खुला के रेशो है क्या माजी में था? हम ज़्यादा पढ़े लिखे बनते चले जा रहे हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न बनते चले जा रहे हैं, हम ज़्यादा एजुकेटेड कहलाते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा घर टूटते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा कमारी लड़कियाँ माएँ बनती चली जा रही हैं, ये नहीं हो रहा? ये किसकी वजह क्या है? इसकी वजह तनज़ुली है, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम नीचे आ रहे हैं, हमारे घर टूट रहे हैं। दो दो पांच पांच छः छः दस दस सालों में तलाकें हो जाती हैं, ना लड़के में बर्दाश्त है ना लड़की में बर्दाश्त है, और सबका दिमाग ख़राब किया हुआ इस मीडिया ने। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी कहीं बात कही, मैं मीडिया में ड्रामे से आते हैं, अब होते होंगे ऐसे ड्रामे। अब ये ड्रामे कौन देखता है? हम जो भी ड्रामे देखता है तो समझते हैं ड्रामे में जो, अबे ड्रामा ड्रामा है, अभी तो बोलिए ड्रामा है। जैसे हम किसी के बारे में कोई आप उल्टी सी हरकत कर, अबे ड्रामा नहीं कर, ड्रामा नहीं कर, हम बोलते हैं ना ड्रामा नहीं कर। क्यों? ड्रामे का मतलब क्या हुआ? नौटंकी कर रहे है? ड्रामे का मतलब क्या हुआ? नौटंकी कर रहा है। हम टीवी पे सामने बैठ कर कहते ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा है, और ड्रामे को हम रियलिटी के साथ अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट करेंगे? बेवकूफ है हम लोग। ये टीवी पर चलने वाला प्रोग्राम घर तोड़वा रहा हो, हमारी बच्चियों को बेशर्म बना रहा हो, हमारे अंदर बेशर्मी और बेहयाई पैदा करवा रहा हो, ऐसे प्रोग्राम देखकर हमें क्या फायदा होगा? अल्लाह तौफीक दे, देखे मदनी चैनल, इंशाल्लाह मदीना मदीना करते रहेंगे, आपका घर आबाद रहेगा इंशाल्लाह। तो आप कहेंगे यार ये शादी की बातें कर रहे, शादी तो हमारी हुई नहीं है। होगी तो सही ना, ख्वाहिश तो होगी कभी शादी वादी तो करनी है। लेट हो गए भैया, अब पढ़ाएंगे कमाएंगे, हमसे यही पूछा जाएगा क्या कमाते हो, और इसका टेंशन अभी से आपको लगा हुआ होगा। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ईमानदारी और मेहनत, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे तमाम स्टूडेंट से रिपीट कर रहा हूं, ईमानदारी और मेहनत आपकी तरक्की के दो पर हैं। जिसको प्रवास करनी है ना, उसका एक पर ईमानदारी का हो और एक पर मेहनत का हो। अगर ये दो पर आपके सही काम कर रहे हैं, आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। अब मेहनत करनी नहीं है, अगर मेहनत करें तो ईमानदारी करनी नहीं है। लोग ईमानदार और मेहनती लोगों को तलाश करते हैं। मैं आपको मार्केट स्ट्रेटजी बयान कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस फील्ड से ताल्लुक है मेरा। लोग मार्केट में मेहनती और ईमानदार लोगों को तलाश करते हैं, क्योंकि उमूमन स्टूडेंट्स के पास इन्वेस्ट नहीं होती, पैसे नहीं होते, कहां से करेगा। मगर अगर ईमानदार है तो पैसे बहुत, मेहनती है तो पैसे बहुत, हुनर बहुत, हुनर है तो आपके पास जॉब बहुत, अल्लाह ने चाहा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो बदकारी की इजाजत मांग रहा था, उसको किस तरह है? उसको दलाइल दिए, उसको समझाया, डांटा नहीं, मारा नहीं, उसको बुरा भला ना कहा, उसको समझाया। और जब वो समझ गए, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो करीब किया था, आका ने उनके सीने पर अपना दस्ते मुबारक रखा और अल्लाह से दुआ की। रावी कहते हैं जब तक वो जिंदा रहे, इनके दिल में कभी भी इस गुनाह का ख्याल ना आया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज था समझाने का। अगर हमने ये अंदाज इख्तियार किया, मैं आपको सही बहाकर, आप जैसे टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट के साथ ही अंदाज रखना पड़ता है। स्टूडेंट हो सकता है कल आप टीचर बने, आपको अंदाज रखना पड़ेगा। आप वालिद बने, आप वालिदा बने, आपको ये अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा, समझाने का अंदाज। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी अल्लाह पाक ने चाहा तो कमजोरी महसूस नहीं होगी, यानी कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको नाकामी अल्लाह ने चाहा तो नहीं मिलेगी। अब ख्वाब पर बात चलिए तो दो तीन बातें ख्वाब के ताल्लुक से आपको सुना देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा देंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब तुम में से कोई पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसका जिक्र सिर्फ उसी से करे जो इसे मोहब्बत रखता हो, और अगर ऐसा ख्वाब देखे जो इसे पसंद ना हो तो उसके शर से और शैतान के शर से उसे पनाह मांगनी चाहिए और अपनी बाएं तरफ लेफ्ट साइड 3 मरतबा थुत्कार दे, इस तरह थुत्कार दे, और इस ख्वाब को किसी से बयान ना करे तो वो कोई नुकसान ना देगा। ये बुखारी की हदीस है। अच्छा ख्वाब देखे तो किससे बयान करना है? आपसे वो मोहब्बत करता हो, आपका करीबी दोस्त हो, हाँ हासिद है, जाहिल है, उसको ख्वाब बयान ना किया जाए, अच्छा ख्वाब। और अगर बुरा ख्वाब है तो किसी से बयान ना करें, अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह ने चाहा तो इससे बचत हो जाएगी। ख्वाब अगर अच्छा देखें तो किसको बयान करना है? उसी को बयान करें जिसको ख्वाब की ताबीर आती है, मगर वो आपका दुश्मन ना हो, आपसे हसद ना करता हो और जाहिल ना हो, दोस्त हो, मोहब्बत करता हो, ख्वाब की ताबीर जानता हो, उसे अच्छा ख्वाब बयान। अगर खुदा ना करता बुरा ख्वाब देखा, अल्लाह की पनाह मांगे, शैतान के शर से पनाह मांगे, अल्लाह पाक उस ख्वाब में जो खराबी आई है उसे बचा लेगा। बुजुर्गों ने एक बात बयान की है ख्वाब के ताल्लुक से, ख्वाब हमेशा हर एक देखता है, और ये जो शोबा है साइकोलॉजी, इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि एक शख्स आता है आपके पास, बैठता है, बात करता है, तो आपको उसका बनना पड़ता है। जी कहिए। ये जो माहिर नफ्सियात होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये ज्यादातर पैसे लेते हैं उसकी सुनने के हैं। चल भाई सुना, और वो आधा घंटा पौना घंटा अपनी सुनाएगा, उसके तो हमदर्दी करेगा, उसको दो मशवरे देगा, इसकी फीस खड़ी हो गई। दवाई ववाई थोड़ी देता है वो, ज्यादातर डॉक्टर इस तरह की दवाइयाँ नहीं देते, मॉरली उसको बेसिकली लेकर चल रहे होते हैं, यानी कि उसका बाप बन जाता है, उसके वालिद बन जाते, उसके हमदर्द बन जाते हैं। वहां से ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट है ही वहीं से, मगर मैं दोबारा कह दूं, इस सब्जेक्ट की जरूरत से मेडिकली नहीं है, ये वो सलाहियत है, ये वो सलाहियत है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। आपके दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अब हमारे क्या होता है, अब दोस्त आपके पास कोई आता है, यार बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, क्या यार ये हो गया, ये हो गया, अच्छा और यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, अब वो बोले यार मैं अपना दुख बयान करने आऊं या अपना दुख खोल के, यानी कोई हमारे पास आकर अपना दुख बयान करता है ना, हम उसको अपना दुख, कोई आकर वो यार रात नींद नहीं आई, नींद नहीं आई यार मेरे को भी रात को नींद नहीं है, अब वो यार इससे क्या बात करूं मैं, यार मुझे भूख नहीं, भूख नहीं लगती यार मेरे को भी भूख नहीं लगती, अब भाई अगला आकर तुमसे हमदर्दी कर रहा है, तुम उसको भूख नहीं लगती, अल्लाह पाक आपके लिए शिफा अता फरमाओ, अब आप वो आपके पास रो रहे हो, आप उसके पास रो रहे हो, अगर आपके पास कोई आकर हमदर्दी करता है तो आप उससे हमदर्दी के तो बोलो, वो आपको बोले मेरे को रोना आ रहा है, बोले मेरे को भी रोना आ रहा है, अब आप उसके साथ रोगे तो फिर उसके आंसू कौन पहुंचेगा, अगर आपके साथ आपके बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं या टीचर के पास स्टूडेंट आके बात कर रहा है, मना कर दिया ना, नहीं सर बात मना कर दिया ना, नहीं बदतमीज हो, ठीक है चले जाते भैया, जब तमीज आएगी तब आएंगे, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में स्पेस था, सहाबा बात करते थे, सहाबा सवालात करते थे, सहाबियात सवालात करती थी, सरकार की बारगाह में आकर सहाबा मशवरे दिया करते थे और आका उनके मशवरे कबूल फरमाया करते थे, जिससे भी मुअल्लिम बनना है उसे पढ़ना पड़ेगा कि सरकार कैसे मुअल्लिम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस उन हालात को पड़े जिन हालात को नबी पाक ने बदल के रख दिया, कत्लो गारतगिरी का बाजार, बदकारी का उस वक्त उरुज था, अखलाकियात की कोई शे उस माशरे में थी तो मुझे बता दें, एक शे ना थी अखलाक की, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कैसा बाखलाक बनाया और वो कैसे सहाबा किराम अता किए कि फरमाया किसी एक की पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे, किसी एक की पैरवी कर लो, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, एक की पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे, तो ये अगर अल्लाह नसीब कर दे ना हम सबको लोगों के साथ हमदर्दी करना, हुस्ने सुलूक करना, इनके साथ अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की ढेरों भलाइयां मिलेंगी, हमदर्दी करना सीखें। जी कहिए, जी कहिए। अच्छा वो जैसे कहना शुरू करेगा हम फौरन बाजे यार बात काट देते हैं, बात ना काटे, बात काटना ये नबी पाक की सुन्नत नहीं है, और हमारे यहाँ एक नया तरीका निकला है बात काटने का, वो सुना देता हूँ जाते जाते, और जैसे आप बात करेंगे सामने वाले बोले माफ कीजिएगा आपकी बात काट रहा हूं, और भैया किस चीज की माफी मांग रहे हो, काट तो चुके, यही तो नहीं करना था, अच्छा फिर थोड़ी देर के बाद माफ कीजिएगा आपकी बात काट रहा हूं, ये महज़ब अंदाज है बदतमीजी का। चंद चीजें मैंने करेक्टर बिल्डिंग पर बात की, कुछ चीज़ें मैंने नफ्सियात के तौर पर बात की, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरह अक्लों के मुताबिक कलाम फरमा कर अपने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की तरबियत फरमाया करते थे, इस पर कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की, और किस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदकारी की इजाज़त मांगने वाले को जिस दलाइल के साथ समझाया, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। कुरान करीम की खूबी बयान कर दूँ, कुरान करीम सिर्फ ये नहीं कहता कि यह मत करना, कुरान करीम उस असबाब को भी ख़त्म करता है जो उसकी तरफ लेके जाते हों। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
May you keep ascending success, say